नमस्कार भारत, 6 जनवरी दिन रविवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। जर्मनी के साइबर हमले में अधिकारियों ने खुद का किया बचाव।
What was attacked by the hackers were private Facebook accounts, private Twitter accounts.
मध्य प्रदेश की नई कांग्रेस सरकार ने बनाया अध्यात्म विभाग, भाजपा ने उठाए सवाल।
इसके बढ़ाना था उसको तो आनंद नाम से भी बढ़ाया जा सकता था, लेकिन अब आनंद नहीं चलाना, अध्यात्म चलाना है। चलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन केवल बदलने के लिए बदलना है, कुछ ना कुछ करना बंद कर नहीं सकते।
जानेंगे कैसी है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के विकास की रफ्तार।
चलने के लिए सड़कें नहीं थी, साधन नहीं थे, स्टेशन नहीं था, ट्रेनें नहीं थी, जो कुछ यहाँ पे दिया हुआ है गांधी परिवार का ही दिया हुआ है।
लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, गुरप्रीत सैनी से। जर्मनी की साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी ने देश में हुए बड़े साइबर हमले के मामले में खुद का बचाव किया है। इस साइबर अटैक में सैकड़ों नेताओं की निजी जानकारियों को ट्विटर पर सार्वजनिक कर दिया गया था। कहा जा रहा है कि अथॉरिटी को इस हफ्ते कई हफ्ते पहले से साइबर हमले की जानकारी थी, लेकिन उसने पुलिस को नहीं बताया। हालांकि एजेंसी का कहना है कि उसे गुरुवार रात तक इस डेटा लीक के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। अमरीका में पिछले दो हफ्ते से जारी कामबंदी के बीच उपराष्ट्रपति माइक पेंस और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेयर्ड कुशनर समेत व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने एक बार फिर डेमोक्रेट नेताओं से मुलाकात की और बजट विधेयक संबंधी विवाद को सुलझाने की कोशिश की। दो घंटे तक चले इस मुलाकात का कोई नतीजा निकलता हुआ नहीं दिखा। कामबंदी की वजह से गृह, कृषि और वाणिज्य विभाग समेत 9 विभागों के कामकाज ठप हैं। कई कर्मचारी काम पर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जिनके काम ज़रूरी हैं उन्हें जाना पड़ रहा है। ब्रेन टर्नर होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के एयरलाइन सिक्योरिटी में तैनात हैं। उन्होंने बीबीसी से कहा,
A lot of people have families. A lot of people are single incomes. I'm lucky enough where I'm married and my wife is still getting paid.
कई लोगों के परिवार हैं, कई लोग परिवार में अकेले कमाने वाले हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी पत्नी भी कमाती है और उसे तनख्वाह टाइम पर मिल रही है। हालांकि मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही है, लेकिन मेरा काम पर जाना ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि जब तक हो सकेगा टिके रहेंगे। ये थे कर्मचारी ब्रेन टर्नर के शब्द। हंगरी में हजारों लोगों ने राजधानी बुडापेस्ट की सड़कों पर प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कड़ाके की ठंड में संसद चौक तक निकाले गए मार्च में आम लोगों के साथ साथ ट्रेड यूनियन के सदस्यों और विपक्षी समर्थकों के ने हिस्सा लिया। हालांकि आयोजकों ने जितने लोगों के आने की संभावना जताई थी, उतने लोग प्रदर्शन में नहीं पहुंचे। दिसंबर में काम के घंटों को बढ़ाने वाले विवादित कानून के आने के बाद से प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल लोग अब मेहनताना बढ़ाने, हड़ताल करने के अधिकार को वापस लागू करने और पेंशन सुधार की मांग कर रहे हैं। लीजा वेल शुरुआत से प्रदर्शनों में हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने कहा,
The protest was pretty big. It was the first one now in the new year. And the first thing I noticed were, again, as with the previous protests, like so many different flags.
प्रदर्शन काफी बड़ा था। नए साल का ये पहला प्रदर्शन था। इस प्रदर्शन में कई पुराने प्रदर्शनकारियों के साथ अलग अलग कर्मचारी यूनियन और विभिन्न पार्टियां और समूह शामिल हुए। मुझे लगता है कि 10,000 से ज्यादा लोग होंगे। हम बहुत शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते हैं। ये थे प्रदर्शनकारी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्राजील के फोर्टालेजा शहर में लगातार चौथे दिन आपराधिक गिरोहों के हमले जारी हैं। घटनास्थल पर सैकड़ों सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, इसके बावजूद हिंसा हो रही है। बसों और दूसरे वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। बैंकों, पेट्रोल स्टेशनों और दुकानों को भी निशाना बनाया गया। हालांकि स्थानीय प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है, दुकानें खुल गई हैं और स्थानीय बसें चलने लगी हैं। ब्राजील के नए राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के लिए ये पहली चुनौती है। उन्होंने हिंसा से निपटने का वादा किया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के चुनाव आयोग के प्रमुख ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने में अभी और देरी हो सकती है। उनका कहना है कि आयोग को अब तक आधे से भी कम टैलीशीट मिली है। कॉन्गो में पिछले हफ्ते राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं। जर्मनी की साइबर डिफेंस एजेंसी BSI ने शुक्रवार को सामने आए साइबर हमले के मामले में खुद का बचाव किया है। आरोप है कि BSI को सैकड़ों नेताओं और हस्तियों के निजी डेटा के चोरी होने के बारे में हफ्तों से पता था। विपक्षी नेताओं ने मामले पर गुस्सा जाहिर किया है। हालांकि एजेंसी का कहना है कि हैकिंग को लेकर दिसंबर की शुरुआत में एक सांसद ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन उन्हें गुरुवार तक साइबर हमले की व्यापकता की जानकारी नहीं थी। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए गुरप्रीत सैनी से।
इस साइबर हमले में जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्कल समेत सैकड़ों जर्मन नेताओं, पत्रकारों और अलग अलग क्षेत्रों की खास हस्तियों की कॉन्टैक्ट लिस्ट, व्यक्तिगत बातचीत और आर्थिक मामलों से जुड़ी जानकारियां ट्विटर पर जारी कर दी गयी। हालांकि दक्षिणपंथी राजनेता इस हमले से बच गए। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का संघीय कार्यालय यानी BSI फिलहाल आलोचना के घेरे में है। कहा जा रहा है कि BSI को दिसंबर से इस लीक की जानकारी थी, लेकिन संघीय क्राइम ऑफिस को इस बारे में शुक्रवार को बताया गया। हालांकि BSI के अध्यक्ष ने कहा कि उनकी टीम ने प्रभावित सांसदों से दिसंबर में ही बात की थी और मोबाइल इंसिडेंट रिस्पांस टीम बनाई थी। शनिवार को BSI ने एक बयान में कहा कि उन्हें कई हफ्तों तक सिर्फ 5 अलग अलग मामलों के बारे में पता था और गुरुवार तक वो इस सभी मामलों के तार नहीं जोड़ पाए थे। थॉमस जारजोम्बे क्रिश्चियन डेमोक्रेट के सांसद हैं और पार्टी के डिजिटल मामलों के पूर्व प्रवक्ता भी। उन्होंने BBC को बताया कि जर्मन संसद इस साइबर हमले की चपेट में नहीं आई है, इसलिए इस मामले से डील करने का काम BSI का नहीं है।
What we have seen is an attack on private accounts, so that makes it a little bit different than other attacks we have seen in the past.
थॉमस जारजोम्बक कह रहे थे कि ये हमला लोगों के निजी अकाउंट्स पर हुआ है, इसलिए ये हमला पहले सामने आए हमलों से कुछ अलग है। जर्मन के निचले सदन का डेटा सुरक्षित है। हैकर्स ने लोगों के निजी फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट और मेल अकाउंट को निशाना बनाया है। जर्मनी की BSI के लिए भी ये मामला नया है। जर्मन की विपक्षी पार्टियों ने घटना के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। लीक हुई जानकारी से कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इसका आकलन अभी नहीं हो सका है, लेकिन जर्मन में न्यायिक मामलों की मंत्री कैटरीना बार्ले के मुताबिक ये एक बेहद गंभीर हमला था। उन्होंने कहा कि इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों ने लोकतंत्र और संस्थाओं में हमारे विश्वास को डिगाने की कोशिश की है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि हमले के पीछे कौन था, लेकिन शक की सुई जर्मनी के दक्षिणपंथी समूहों और रूस की ओर है। रूस पर पहले भी जर्मनी में साइबर हमले करने के आरोप लगे हैं। पिछले साल सरकार के IT नेटवर्क पर हमला हुआ था, इसका संदिग्ध भी रूस को ही बताया गया था।
जर्मनी में साइबर हमले के बाद अधिकारियों ने खुद का किया बचाव। रिपोर्ट सुना रही थी गुरप्रीत सैनी। रुख करते हैं भारत का। सबरीमला मंदिर को लेकर केरल में जारी हिंसा ने नया रूप ले लिया है। शुक्रवार को कन्नूर में भाजपा सांसद वी मुरलीधरन और CPI विधायक AN शनीर के घरों पर देसी बम फेंके गए। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हिंसक घटनाओं के लिए संघ परिवार को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि वे ये राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
सबरीमला मंदिर में 4 दिन पहले 50 साल से कम उम्र की 2 महिलाओं ने प्रवेश किया था, जिसके बाद से केरला राज्य के कई इलाकों में कुछ ना कुछ हिंसा होती आ रही है। शुक्रवार की रात को BJP सांसद वी मुरलीधरन और CPM के विधायक AN शनीर के घरों पर देसी बम फेंके गए थे। ये वाकया उस कन्नूर जिले में हुआ जो पहले से ही CPM और BJP RSS के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा के लिए मशहूर है। स्थानीय प्रशासन ने कल राजनीतिक दलों को साफ कह दिया कि वो उन्हें जुलूस निकालने की इजाजत नहीं देगा। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पत्रकारों से कहा, ये आम जनता पर, फिर मीडिया पर और नए बिल्डिंगों पर हिंसा करने की पूर्व नियोजित योजना थी। संघ परिवार का एक ही उद्देश्य है तनाव का माहौल बनाए रखना, जबकि हम केरला को एक नए युग में ले जाना चाहते हैं। ये थे पिनराई विजयन के शब्द। विजयन ने यह भी कहा कि उनकी सरकार सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी ताकि हिंसा नहीं हो, लेकिन सरकार के रुख पर राजनीतिक विश्लेषक और कोची के डेक्कन क्रॉनिकल अखबार के संपादक KJ जेकब कहते हैं, राज्य सरकार की समझ इस मामले में बहुत ही सुस्त है। ये मामला आजकल का नहीं है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर में महिलाओं को प्रवेश करने के मामले में अपना निर्णय सुनाया है, तब से ये स्पष्ट हो गया है कि जो उनकी विचारधारा को नहीं मानते हैं वो लोग राजनीति करेंगे। ये भी स्पष्ट था कि जब महिलाएं प्रवेश करेंगी तो राज्य में हिंसा होगी, लेकिन सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ये थे केजे जेकब के शब्द। तो सवाल ये उठने लगा है कि सरकार ने अपनी आंखें इस मामले में क्यों नहीं खोली है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
वहीं मेघालय की एक गैर कानूनी कोयला खदान में 15 मजदूरों को फंसे 23 दिन हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बचाव के काम में तेजी आई है, लेकिन अब तक कोई सफलता मिलती नजर नहीं आ रही। उन तक पहुंचने के लिए सेना, नौसेना और एनडीआरएफ की टीमें पुरजोर कोशिश कर रही हैं। उस जगह करीब 50 से ज्यादा रैट होल माइंस हैं, जिनमें पानी निकालने के बाद रात में फिर से पानी भर जाता है। मेघालय से बीबीसी संवाददाता देवीना गुप्ता की रिपोर्ट सुना रही हैं मानसी दास।
बचाव दल की उम्मीदें 350 फीट नीचे दफन हैं। ये जमीन के भीतर एक गैरकानूनी कोयले की खदान में काम करने गए उन 15 मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जो वहां अचानक पानी आ जाने से फंस गए थे। इस घने जंगल में समय तेजी से भाग रहा है और इन लोगों के जिंदा होने की उम्मीद भी खत्म सी हो रही है। एनडीआरएफ के संतोष कुमार सिंह कहते हैं,
दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट माइन रिस्क।
ये अब तक का सबसे मुश्किल ऑपरेशन है और पानी का स्तर नीचे भी नहीं जा रहा।
अधिकारियों का दावा है कि इलाके में स्थानीय लोगों ने ऐसी करीब 100 गैरकानूनी खदानें खोद डाली हैं। इन्हें रैट होल कहा जाता है, क्योंकि मजदूरों को सीधे अंदर जाना पड़ता है। अंदर है संकरी सुरंगें, जहां से वो बहुत मशक्कत से कोयला निकालते हैं। ज्यादा जोखिम का मतलब ज्यादा कमाई। घटनास्थल पर पहुंची बीबीसी संवाददाता देवीना गुप्ता बताती हैं,
मेघालय के पर्यावरण को बचाने के लिए, यहाँ के झील और तालाब बचाने के लिए 2014 में भारत के नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी कि एनजीटी ने एक नियम पारित करा था, जिसके तहत यहाँ पे कोयला खदानों को बंद करने को कहा था। पर इस हादसे के बाद यही सामने आता है कि आज भी गैर कानूनी तरीके से कोयला जो है वो निकाला जा रहा है और मेघालय से बाहर भेजा जा रहा है।
लुमथरी गांव में रहने वाली रीटा डार जानती हैं कि दांव पर क्या लगा हुआ है। उनके 20 साल के बेटे शलाबास डार ने क्रिसमस पर स्थानीय चर्च के लिए अतिरिक्त पैसा जुटाने के इरादे से कोयले की खदान में काम करना चाहा। पानी से भरी खदान में वो भी फंसे हुए हैं। रीटा डार कहती हैं,
मैंने उसे जाने से मना किया था और ये काम वो पहली बार कर रहा था। वो चर्च के लिए पैसे जुटाना चाहता था। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा।
30 साल के कृष्णा पड़ोसी राज्य असम से इस रैट होल माइन में काम करने आए। उन्होंने इस अंधेरी दुनिया के राज बताए, जहां वो हर दिन करीब 4000 रुपए के लिए काम करते हैं और जहां न तो कामगार के कोई अधिकार हैं, न सुरक्षा उपकरण और न ही दुर्घटना बीमा।
10 साल करीब हो गया मेरा आया वाला, और काटने के लिए बैठ के जाना पड़ता है, अंदर में काट के निकलना पड़ता है बैठ के।
एक अनुमान के मुताबिक मेघालय की खदानों में 65 करोड़ टन कोयला है। खनन मुनाफे वाला व्यवसाय है। प्रतिबंध लगने से पहले सालाना तकरीबन 60 लाख टन कोयला निकाला जाता था। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ज्यादातर खदानों के मालिक स्थानीय राजनेता हैं, जिनका खौफ कानून से ज्यादा है। इंपल्स एनजीओ से जुड़ी रोसाना लिंगदो कहती हैं, यहाँ कोल माफिया है, इन कोयला खदानों के मालिक भी हैं और वो एक बड़ा खतरा है। राज्य सरकार कोर्ट में कोयले के खनन को कानूनी बनाने के लिए लड़ रही है। दूसरी तरफ लोग खदान में फंसे अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
ये थी बीबीसी संवाददाता देवीना गुप्ता की रिपोर्ट, जिसे सुना रही थी मानसी दास। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां कमलनाथ सरकार ने एक नया विभाग अध्यात्म नाम से बनाया है। कमलनाथ के इस विभाग को लेकर कहा जा रहा है कि पार्टी सत्ता में आने के बाद उसी सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ आगे बढ़ रही है, जिसे लेकर चुनाव लड़ा गया था। पिछली सरकार की ओर से बनाए गए आनंद विभाग को भी इसी विभाग में जोड़ दिया गया है। सुनिए भोपाल से शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
लगातार विवादों का सामना कर रही कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में आनंद और धर्मस विभाग को मिलाकर अध्यात्म विभाग बनाया है। इसका वादा पार्टी ने अपने वचन पत्र में भी किया था। इसका मुख्य काम धार्मिक जगहों का रखरखाव, धार्मिक मेलों का प्रबंधन, तीर्थ यात्राओं का प्रबंधन, पुजारी महंत की नियुक्ति और हटाने का काम होगा। लेकिन देश में पहली बार बन रहे इस नए विभाग को लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी खुश नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं,
इसलिए बढ़ाना था उसको तो आनंद नाम से भी बढ़ाया जा सकता था, लेकिन अब आनंद नहीं चलाना, अध्यात्म चलाना है, चलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन केवल बदलने के लिए बदलना है, कुछ ना कुछ करना, बंद तो कर नहीं सकते, बंद इसलिए भी नहीं कर सकते कि बंद करेंगे तो हल्ला होगा, कई योजना इतनी पॉपुलर है कि उनको आप बंद करेंगे तो तकलीफ में आएंगे, इसलिए बदल डालो उनको। ये किसके कहने पर हो रहा है ये भी मैं नहीं समझ पा रहा, हो सकता है कुछ लोगों ने सुझाया हो कि शिवराज नाम की चीज मिटा दो, आनंद आएगा तो ये आएगा कि शिवराज ने शुरू किया, अब संभल के कार्ड भी बदल दो, अब कार्ड बदल दो, फोटो हटा दो, लेकिन दिल से तो नहीं निकाल सकते ना।
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस विभाग को वक्त की जरूरत बता रही है। पार्टी का कहना है कि इससे प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों को फायदा होगा और यह उन्हें ध्यान में रखकर बनाया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे कहते हैं,
ये शिवराज सिंह चौहान केंद्रित आनंद मात्र था, कमलनाथ जी ने आध्यात्म विभाग प्रारंभ किया है, आध्यात्म सामूहिक आनंद की अनुभूति है, समूचे मध्य प्रदेश के 7.25 करोड़ जनता जब आनंद का अनुभव करेगी वो आध्यात्म होगा शिवराज सिंह चौहान साहब।
वहीं मुसलमानों से जुड़ी एक तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी का मानना है कि यह कदम एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए लिया गया है। कमेटी का मानना है कि कांग्रेस की यह सरकार हर किसी के वोट से बनी है, इसलिए इसे सबका ख्याल रखना चाहिए। कमेटी के अध्यक्ष औसाफ शाह मीर खुर्रम का कहना है,
वो जो लफ्ज है वो अमूमन सनातन धर्म की धार्मिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता है, आध्यात्मिक शब्द उनके लिए महकमा पहले से बना हुआ धर्म धार्मिक न्यास विभाग, मुसलमानों के कल्याण के लिए भी कोशिश करना चाहिए, उनको पहल करना चाहिए कि अगर आप ये ऐसा कोई महकमा बना रहे हैं, मसाजिद बोर्ड भी बनाई है लाखों इमाम मौजूद खिदमतगारों के कल्याण के लिए, दरगाह बोर्ड भी बनाइए, ये हमारी डिमांड है।
वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस पूरी तरह से उसी राह पर चल रही है जिस तरह से पिछली भाजपा सरकार चल रही थी, कांग्रेस ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है जो पिछली सरकार में नहीं हुआ है। गिरजा शंकर कहते हैं,
जिस तरह से पिछली सरकार चल रही थी कई मामलों में वैसी ही चल रही है, और जहां तक सवाल अध्यात्म वाला मामला है तो एक साफ लाइन जो उन्होंने चुनाव के दौरान ली थी हिंदुत्व की कमलनाथ ने, और राहुल गांधी को पहली बार राम भक्त और शिव भक्त, मतलब गुजरात में भी साफ लाइन थी लेकिन मंदिर गए वहां राम भक्त शिव भक्त नहीं था, यहाँ तो बकायदा घोषित रूप से राम भक्त शिव भक्त करके घुमाया गया, तो उसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, मतलब ये कि जो बीजेपी को का से टक्कर लेने के बजाय बीजेपी का कॉपी कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में कांग्रेस लौटी है। अगले 6 महीने के अंदर लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। यही वजह है कि पार्टी की कोशिश यह है कि वह किसी भी वर्ग को नाराज न करे। कांग्रेस की कोशिश बहुसंख्यक वर्ग के साथ ही साधु संतों को भी खुश रखना है। वहीं पार्टी का यह भी दावा है कि सरकार हर किसी के लिए काम कर रही है। शुरह न्याजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और अब जान लेते हैं आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों में क्या कुछ खास है। गुरप्रीत सैनी अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी गुरप्रीत, बताएं क्या कुछ खास है आज के अखबारों में।
जी, सीबीआई अवैध खनन मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके पूर्व कैबिनेट सहयोगी गायत्री प्रजापति की संलिप्तता की जांच करेगी, ये खबर इंडियन एक्सप्रेस में है। अखबार ने 2 जनवरी को दर्ज एफआईआर के हवाले से ये खबर छापी है। शनिवार को सीबीआई ने मामले में दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसमें आईएएस बी चंद्रकला, समाजवादी पार्टी के विधायक रमेश मिश्रा समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छापे मारे गए।
गुरप्रीत, इसमें आईएएस ऑफिसर जो बी चंद्रकला का नाम लिया जा रहा है वो बेहद, उनको लेकर कुछ पहले जब तारीफें हुई थी जब वो बुलंदशहर की डीएम थी, उस दौरान उनका जो सख्त रवैया रहता था, कड़ा रवैया रहता था काम को लेकर, उसकी काफ़ी तारीफें भी हुई थी पहले बीच में।
जी, और समाजवादी पार्टी का तो कहना है कि ये बदले की कार्रवाई हो रही है।
ओके, आगे।
और विजय माल्या को लेकर एक खबर है जो सभी अखबारों में दिख रही है।
पगीटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, जो उनको भगोड़ा आर्थिक जो है दिवालिया घोषित किया गया है नए लॉ के थ्रू जो पिछले साल पास हुआ था।
हाँ, तो सभी जगह हेडलाइन दिख रही है कि विजय माल्या पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी
घोषित।
जी, जो नई भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 आया है उसके तहत ये पहले हैं जिन्हें की आर्थिक अपराधी घोषित किया गया।
पिछले साल ही पास हुआ है ये बिल और उसके तहत ये पहले शख्स हैं जो आर्थिक अपराधी घोषित हुए।
जी, इसके बाद जो इनसे जुड़ी संपत्तियां हैं प्रवर्तन निदेशालय के लिए अब ये आसान होगा उनकी कुर्की करना।
जी,
इसके अलावा जो सबरीमला मामला आपने अभी हमने खबर सुनी उससे रिलेटेड खबर भी सभी अखबारों में दिख रही है। जो हिंसा है वो कन्नूर ज़िले में काफ़ी ज़्यादा हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है कि अभी तक 10 महिलाएं, जिनमें कि 3 मलेशिया की महिलाएं हैं, तमिल मूल की वो हैं, वो अभी तक जा चुकी हैं सबरीमला मंदिर।
तो इसमें टोटल अब 10 बता रहे हैं कुल महिलाओं को।
जी, टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक,
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, जबकि जो पहली दो महिलाएं थीं वो केरल की और जो 2 तारीख को दाखिल हुई थी, फिर उसके बाद आया कि श्रीलंका की एक महिला भी गई है, तो इसके हिसाब से अब 10 हो गई हैं।
हाँ जी, पुलिस के जो सीसीटीवी फुटेज है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि 10 महिलाएं अभी तक जा चुकी हैं। और जो प्रदर्शन हो रहे हिंसक, कल तक 1400 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन आज जो अखबार बता रहे हैं कि 3000 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
एक गुरप्रीत, में अमर उजाला पे एक खबर देख रहा हूँ, उसमें हेडिंग है बैंक कर्मचारी 8 से 9 जनवरी को हड़ताल पर रहेंगे, यानी 2 दिन, और इनका कहना है कि कथित मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ 10 ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने। इसके अलावा एक खबर और मैं गुरप्रीत देख रहा हूं कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि एफआईआर अगेंस्ट 28, मतलब 28 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है, जो एक पुलिस एक स्कूल में जो उन्होंने जानवर, जो आवारा जानवर हैं, पाल आवारा जो गायें हैं उनको बांध दिया था, उसके खिलाफ शाहजहांपुर में 28 लोगों के 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा जनसत्ता पे मैं खबर देख रहा हूँ कि सिरमौर में स्कूल बस खाई में गिरी जिसमें 7 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हुई है।
बहुत ही दर्दनाक खबर।
जी, अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरप्रीत। बढ़ते हैं आगे। राजनीतिक रूप से अहम मानी जाने वाली अमेठी सीट पर राजनीतिक गतिविधियां फिर से तेज हो गई हैं। कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली सीट पर बीजेपी पिछले 4 साल से लगातार सक्रिय है और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव हारने के बावजूद लगातार यहां का दौरा कर रही हैं। स्मृति ईरानी समेत बीजेपी के सभी नेता ये बात दोहराते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने यहां कोई विकास कार्य नहीं किया है, लेकिन उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है यही जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी समीरात्मज मिश्र ने इस रिपोर्ट में।
शुक्रवार को राहुल गांधी तो अमेठी नहीं पहुंच सके, लेकिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी आईं और उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी का जोर इस बात पर था कि अमेठी में विकास की रफ्तार तभी तेज हुई है जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है। राहुल गांधी अमेठी से सांसद हैं और पिछले चुनाव में उन्होंने स्मृति ईरानी को ही हराया था, लेकिन राहुल गांधी के अमेठी दौरों को भी स्मृति ईरानी अपनी जीत मानती हैं।
स्मृति ईरानी ने वचन दिया था 2014 में सार्वजनिक रूप से कि वो बार बार अमेठी में विकास करने के लिए लौटेगी। मैंने अपने वचन को पूरा किया। स्मृति ईरानी ने कहा था कि राहुल गांधी के दर्शन होंगे जनता को, वो दर्शन हमने सुनिश्चित करवाए कि जो 5 साल में एक बार आते थे अब उन्हें बार बार आना पड़ रहा है।
अमेठी में एक कार्यक्रम में स्मृति ईरानी ने दावा किया कि 4.5 साल में विकास के इतने काम हुए हैं जितने पिछले 60 साल में नहीं हुए, लेकिन अमेठी की आम जनता स्मृति ईरानी या फिर भारतीय जनता पार्टी के इस दावे पर पूरी तरह से मुहर नहीं लगाती। अमेठी रेलवे स्टेशन से करीब 200 मीटर दूर राजर्षि चौराहे पर कुछ लोगों से हमने इस बारे में बात की।
हमारे आजा बाबा बताते हैं, बुजुर्ग लोग जो बताते हैं, चलने के लिए सड़कें नहीं थी, साधन नहीं थे, स्टेशन नहीं था, ट्रेनें नहीं थी, जो कुछ यहाँ पे दिया हुआ है गांधी परिवार का ही दिया हुआ है।
अमेठी में कुछ नहीं हुआ, जो था उसमें भी कम हो गया, जो योजनाएं थी पहले की उनको बंद कर दिया गया और अमेठी के साथ ये सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है।
उनको प्रोजेक्ट किया गया है कि आप झूठा प्रचार करिए, अमेठी की जनता नहीं पूरे देश की जनता का हम आसानी से गुमराह कर सकते हैं। इनके जितने प्रोजेक्ट हैं ये 4-4 विभाग मिनिस्टर रह चुकी हैं लोग, लेकिन इनका कोई पत्थर नहीं लगा। अमेठी में मैंने ये विकास काम किया, स्मार्ट सिटी घोषणा किया, इन्होंने तत्काल वापस ले लिया। जितनी रेल की व्यवस्थाएं सब बाधित चल रही, क्रॉसिंग पूरी जाम चल रही है, कहीं ओवरब्रिज नहीं बना।
लेकिन अमेठी में बीजेपी के जिला अध्यक्ष दयाशंकर पांडे कहते हैं कि पहले भले ही कुछ हुआ हो लेकिन राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया।
राहुल गांधी ने यहाँ के विकास के लिए 10 वर्षों में कोई काम नहीं किया और इसी कारण स्मृति ईरानी जब यहाँ आई तो उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि यहाँ जो रेलवे लाइन है उसका दोहरीकरण होना चाहिए, जो यहाँ सड़कें हैं वो चौड़ी होनी चाहिए।
स्थानीय लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की सरकार ने नए प्रोजेक्टों को शुरू किए नहीं और पहले की योजनाओं को भी बंद कर दिया गया। कांग्रेस नेता बब्बन द्विवेदी कहते हैं,
अमेठी में सर्वप्रथम आप जान लीजिए एशिया स्तर पे यहाँ पर क्या कहते पेट्रोलियम संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, BHL है, HL है, ये सब कांग्रेस राहुल गांधी राजीव गांधी ये सब कांग्रेस की देन है। स्मृति ईरानी ने क्या किया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेठी के लिए क्या किया, यहाँ पर IIIT था, संस्थान था, राहुल जी ने इसको बनवाए थे, यहाँ पर शुरू हुआ था, वो भी निर्माण कार्य बंद करके इलाहाबाद चालू करा दिए।
दिलचस्प बात यह है कि खुद BJP के लोग भी कौशल विकास केंद्र के अलावा किसी ऐसी परियोजना को नहीं बता पाते जिसे मौजूदा NDA सरकार ने शुरू किया हो और वो इसी कार्यकाल में पूरा हुआ हो। लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार अमिता वर्मा कहती हैं,
स्मृति ईरानी जी 2 साल से कर रही हैं कि दिवाली में वो भिजवा देती हैं साड़ियाँ 10,000 औरतों के लिए। ठीक है, औरतों को साड़ी मिल जाती है मगर वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। मतलब उसका आप देखें ना, कोई आप रोजगार क्रिएट करिए, वो तो आपने किया नहीं। आपके भी 4.5 साल हो गए। जो फूड पार्क प्रोजेक्ट था उसको इन्होंने बंद ही कर दिया, तो ऐसी कोई इंडस्ट्रियल यूनिट वहाँ नहीं इन्होंने लगाई जिससे ये कहिए कि लोकल रोजगार मिल जाए। या तो आप इंडस्ट्री लगाइए या पुरानी रिवाइव करिए कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले तो अपने आप एम्पावर हो जाएंगे।
जानकारों का ये भी कहना है कि अमेठी में विकास कार्य हुए जरूर है लेकिन राज्य में करीब 2 दशक से कांग्रेस की सरकार न होने के चलते विकास की रफ्तार प्रभावित हुई है। स्थानीय पत्रकार योगेश श्रीवास्तव कहते हैं कि जनता कांग्रेस और BJP के कार्यों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी कर रही है और अपनी राय चुनाव नतीजों के रूप में ही स्पष्ट करेगी, उससे पहले नहीं। समीर आत्मज मिश्र, BBC अमेठी।
सिडनी में जारी भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे दिन का खेल बारिश के कारण रुका हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 236 रन बना लिए हैं। वह अभी भी भारत से 386 रनों से पीछे है और 4 विकेट उसके हाथ में हैं। अब जान लेते हैं अन्य खेल की खबरें खेल समाचारों में।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कल से संयुक्त अरब अमीरात में 17वां AFC एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। इस बार इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 6 ग्रुप में बांटा गया है। भारतीय टीम भी पूरे जोश के साथ इसमें हिस्सा ले रही है, जिसे ग्रुप ए में मेजबान संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड और बहरीन के साथ रखा गया है। भारत आज अपने ग्रुप में थाईलैंड का सामना करेगा। थाईलैंड की ताकत और मुकाबले को लेकर फुटबॉल समीक्षक गौस मोहम्मद कहते हैं,
थाईलैंड का है कि एक अलग अंदाज की फुटबॉल खेलती है, रेस्टलेस रहती है, भागती रहती है और छोटे पास जो है खेलती है, लंबे पास बीच बीच में देती है, वैरायटी है इनके पास। पहला मैच हमेशा मुश्किल होता है, चाहे वो कोई सा भी गेम ले लीजिए। तो ये मैच सबसे बड़ी जो चुनौती होगी हमारी डिफेंस के लिए होगी कि कैसे रोकती है, मिडफील्ड के लिए होगी, क्योंकि हमें पहला मैच कभी हारना नहीं चाहिए।
वहीं प्रो कबड्डी लीग का खिताबी मुकाबला कल बेंगलुरु बुल्स ने गुजरात फॉर्च्यून जॉइंट्स को 38-33 से हरा कर अपने नाम किया। इस तरह सीजन 6 को नया चैंपियन भी मिला। इससे पहले पटना पायरेट्स 3 बार और जयपुर पिंक पैंथर्स और यू मुंबा 1-1 बार चैंपियन बन चुकी हैं। उधर न्यूजीलैंड ने कल बे ओवल में खेले गए दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेहमान श्रीलंका को 21 रन से हरा दिया। श्रीलंका के सामने जीत के लिए 320 रनों का लक्ष्य था लेकिन उसकी पूरी पारी 46.2 ओवर में 298 रन पर सिमट गई। श्रीलंका के थिसारा परेरा ने 140 रनों की शतकीय पारी खेली। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 319 रन बनाए। न्यूजीलैंड के बेहद अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर ने रन आउट होने से पहले 90 रनों की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त भी हासिल कर ली।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
BBC समाचार। जर्मनी की साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी ने देश में हुए बड़े साइबर हमले के मामले में खुद का बचाव किया है। इस साइबर अटैक में सैकड़ों नेताओं की निजी जानकारी को ट्विटर पर सार्वजनिक कर दिया गया था। अमेरिका में पिछले 2 हफ्ते से जारी कामबंदी के बीच उपराष्ट्रपति माइक पेंस और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेयर्ड कुशनर समेत व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने एक बार फिर डेमोक्रेट नेताओं से मुलाकात की और बजट विधेयक संबंधी विवाद सुलझाने की कोशिश की। 2 घंटे तक चली इस मुलाकात का कोई नतीजा निकलता हुआ नहीं दिखा।
बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आए हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।